परमात्मा की कृपा से हम लोग विचार कर रहे हैं पंचदशी ग्रंथ के अष्टम प्रकरण में। इस प्रकरण का नाम हुआ कूटस्थ दीप प्रकरण। कूटस्थ अधिष्ठान है, जैसे समस्त चित्रों का अधिष्ठान पर्दा होता है, जो भी भासता है आत्मा से, साक्षी से, सबको चित्र कहा जाएगा। यहां पर दृश्य दृग विषयत्वम दृश्यत्वम। उस कुटस्थ अधिष्ठान स्वरूप को यहां पर प्रतिपादन किया जा रहा है अष्टम प्रकरण में, इसलिए इसका नाम हो गया कुटस्थ दीप। कुटस्थम स्वरूप ब्रह्म दीपयति स्पष्टतया। दीपयति का अर्थ प्रकाशयति, प्रतिपादन करता है यहां पर अष्टम प्रकरण, इसलिए प्रकरण का नाम हो गया कुटस्थ दीप। तो ग्रंथ की भूमिका, अष्टम प्रकरण की भूमिका के ऊपर रामकृष्ण टीकाकार लिख रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे थे। तो भूमिका वाक्य में देखो, अत्र मुमुक्षुर मोक्ष साधनस्य ब्रह्मात्मकत्व ज्ञानस्य। मुमुक्षु को मोक्ष चाहिए, जैसे भुभुक्षु को, भूखा व्यक्ति को भूख की निवृत्ति चाहिए, भूख को शांत करना चाहता है, इसलिए उसका जो साधन होगा वही चाहिए उनको। तो भूख निवृत्ति का साधन भोजन है, अनुकूल भोजन भी होना चाहिए। इसलिए यहां पर कहते हैं मुमुक्षु के लिए मोक्ष चाहिए, और मोक्ष का जो वास्तविक साधन है तो साधन से थे साध्य प्राप्त होगा। तो साधन का भी यहां पर प्रतिपादन किया जा रहा है, कोई भ्रांति ना हो कि मोक्ष का साधन दूसरा कोई होगा। तरति शोकम आत्मवित छांदोग्य में कहा गया, ज्ञानत एव तु कैवल्यम। लेकिन किसका ज्ञान है तो यहां पर लिखते हैं देखो, ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञानस्य। ब्रह्म ही आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरणवाणी। और दोनों का स्वरूप तो एक ही है, इसलिए यहां पर लिखते हैं एकत्व। एकत्व का अर्थ अभेद, एकत्व का अर्थ क्या, अभेद लेना है। लेकिन अभेद भी दो प्रकार का होता है, एक मुख्य अभेद होता है, एक गौण अभेद होता है ना? जैसे जंगल में रहने वाला सिंह को सिंह बोल दिया, वो तो अभेद मुख्य, लेकिन बच्चे को सिंह बोल दिया तो सिंह हो मानव कह, तो गौण हो गया, है ना, गौण हो गया वो। इसलिए यहाँ पर कौन सा अभेद लेंगे, मुख्य अभेद, गौण अभेद नहीं, क्योंकि उपासना का प्रकरण ये नहीं है। और ये जो प्रकरण चल रहा है ना कुटस्थ दीप, तो उत्तम जो अधिकारी है, उत्तम अधिकारी जो मुमुक्षु है, उसी के लिए है। और जो उत्तम अधिकारी नहीं है, ज्ञान में जो समर्थ नहीं है, प्रतिबंधक यदि हो तो प्रतिबंधक को निवृत्त कराने के लिए आगे प्रकरण आएगा, ध्यान दीप प्रकरण, ध्यान में रखना, क्योंकि अनेक प्रकार के प्रतिबंधक होते हैं। कोई अतीत होता है, कोई वर्तमान होता है, कोई आगे होने वाला भावी प्रतिबंधक होता है, उन्हीं के लिए ध्यान करना चाहिए, उपासना करें। यो विचार न लभे तो, जो विचार में समर्थ नहीं है वो उपासना करेगा, ईश्वरीय बल को प्राप्त करेगा वो। अनेक प्रकार के प्रतिबंधक होते हैं, चित्त में चांचल्य है, विषय शक्ति है, प्रज्ञा मंद्य है, कुतर्क है, पूर्व संस्कार हो जाता है, किसी को घर में ही पूर्व संस्कार दृढ़ रहता है तो आश्रम में आने के बाद भी वो संस्कार जाता नहीं है, तो वेदांत भी सुनता रहेगा तभी उनको वेदांत का ज्ञान नहीं हो सकता है। ये सब आगे बताएंगे, तो ध्यान में रखना, जो मंद अधिकारी अथवा मध्यम अधिकारी, उसी के लिए आगे प्रकरण आने वाला है। और अभी जो प्रकरण आ रहा है, आत्मानं चित विजानीयत् अयम अस्मिति पुरुष, ऐसा ज्ञान करने में जो असमर्थ है उसके लिए आगे, और ऐसा ज्ञान को प्राप्त करने में जो समर्थ है उसी के लिए प्रकरण है। तो देखो, ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञान, एकत्व का अर्थ अभेद, लेकिन परोक्ष ज्ञान यहां पर नहीं, अपरोक्ष ज्ञान है, क्योंकि जो भ्रांति से जो पदार्थ दिख रहा है वो यदि अपरोक्ष हो तो परोक्ष ज्ञान से नहीं हटेगा। रस्सी में सर्प दिख रहा है सामने, ये जो भ्रम है, परोक्ष हुआ कि अपरोक्ष हुआ? अपरोक्ष हुआ ना, सामने दिख रहा है, अपरोक्ष हो गया, तो रस्सी के परोक्ष ज्ञान से जाएगा? नहीं जाएगा। कोई बोल देगा अरे भाई ये रस्सी है ना, लेकिन इतने मात्रा से वो भ्रम की निवृत्ति नहीं होती, भय रहता है। जब तक पास में जा करके टॉर्च लगा करके नहीं देख लेते हैं है ना, तब तक भ्रांति की निवृत्ति नहीं होती है, है ना? ठीक इसी प्रकार से दृष्टांत में ये जगत जो दिख रहा है ये तो अपरोक्ष है, जगत सत्य दिख रहा है ये तो अपरोक्ष भ्रम हो गया। इसलिए अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से नहीं हो सकती है, अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, है ना? इसलिए अपरोक्ष ज्ञान है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये अपरोक्ष ज्ञान आप लोग सुन रहे हैं ना प्रातः काल में प्रवचन में, ईशावास्य चल रहा है ना, तो वो क्या जी, नारद भक्ति सूत्र, कोई बात नहीं, तो ईशावास्यम इदम सर्वम वो भी अपरोक्ष ज्ञान है, ध्यान में रखना। इसलिए अपरोक्ष ज्ञान बोल रहे हैं, तो ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञान, ये जो ज्ञान होगा वाक्य से, है ना? वाक्य प्रमाण से ज्ञान होता है, अवांतर वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है। अवांतर वाक्य न परोक्षा ब्रह्मधीर भवेत, पीछे गया तृतीय दिन में, अवांतर वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है और महावाक्य विचारण अपरोक्ष ब्रह्म थे, अपरोक्ष ब्रह्म का ज्ञान हो, अपरोक्ष ज्ञान होगा। लेकिन महावाक्य से ज्ञान तो होता है, लेकिन ये होना चाहिए, बोल दिया देखो, तुम पदार्थ शोधन पूर्वकत्वात्, तुम पदार्थ का शोधन जब नहीं करेंगे, है ना, तब महावाक्य का विचार करने पर भी ज्ञान होने वाला नहीं है, है ना? या पदार्थ बोल रहे, देखो त्वम पदार्थ, तो पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, कहीं कहीं वाच्यार्थ से भी वाक्यार्थ का ज्ञान होता है और कहीं कहीं लक्षार्थ से भी होता है। तो वाच्यार्थ को ही पदार्थ बोलते हैं और लक्षार्थ को भी पदार्थ बोलते हैं। इसको ठीक ठीक से समझ लो, शब्द में जो सामर्थ्य होती है, अपने अर्थ को बोध कराने की सामर्थ्य शब्द में होती है। जैसे घटा बोल दिया, गोल मटोल आकार वाला जो पिंड है जिसमें जल भरते हैं, जल लाते हैं, है ना? तो घट शब्द सुन करके पदार्थ की उपस्थिति बुद्धि में हो जाती है, लेकिन पट कहने से तो नहीं होती है उपस्थिति, है ना? इसका मतलब शब्द में कोई ना कोई सामर्थ्य है। ऐसे अग्नि से दहन क्रिया होती है, जल से नहीं होती है, मृत्तिका से घट बनता है, जल आदि से नहीं बनता है, इसका मतलब उसमें सामर्थ्य है। तो शब्द में जो सामर्थ्य रहती है अपने अर्थ को बोध कराने की, उसको कहते हैं दार्शनिक भाषा में वृत्ति। उसका नाम क्या है? वृत्ति, वृत्ति बोलते हैं, वृत्ति, वृत्ति सामर्थ्य का नाम है। वो वृत्ति दो प्रकार की है, एक शक्ति वृत्ति बोलते हैं, एक लक्षणा वृत्ति बोलते हैं। तो शक्ति वृत्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उसको कहते हैं वाच्यार्थ, वाच्यार्थ बोलते हैं, अथवा शक्यार्थ बोलते हैं, पर्यायवाचक हो गया। देखो वाच्यार्थ कहो, शक्यार्थ कहो। जैसे गंगायाम जलम, गंगा जी में जल है, तो गंगा शब्द हो गया, तो गंगा शब्द के द्वारा किस अर्थ का भान होता है? गंगा जी में गंगा प्रवाह, गंगा का अर्थ क्या है? प्रवाह जो चल रहा है, उसको कहेंगे वाच्यार्थ कहेंगे, शक्यार्थ बोलेंगे। तो यहां पर देखो वाच्यार्थ से ही वाक्य के अर्थ का ज्ञान हो जाता है कि गंगा प्रवाह में जल है। लेकिन जहां पर गंगायाम घोषः कहेंगे तो वाच्यार्थ से नहीं होता है, लक्षणा से होगा, है ना? शक्ति वृत्ति से नहीं होगा, क्योंकि विरोध हो गया। देखो भाई, गंगा प्रवाह में घोष मतलब झोपड़ी घर नहीं हो सकता है, यदि विरोध हो रहा है तो जहां पर विरोध होता हो तात्पर्य की उपपत्ति नहीं हो पाता हो, पहले बताया आपको तात्पर्य, भक्तोर इच्छा तात्पर्यम, वक्ता क्या कहना चाहता है उसको कहते हैं तात्पर्य। तो तात्पर्य की उपपत्ति नहीं हो पा रही है, गंगा प्रवाह में जो है घोष झोपड़ी घर कैसे रह सकता है, तो विरोध हो गया। और बोलने वाला प्रामाणिक व्यक्ति है, कोई हरे गिरे व्यक्ति तो है ही नहीं, आप्त पुरुष है, यथार्थ वक्ता आप्त। जो तात्पर्य की जहां पर उपपत्ति नहीं हो पाती है, विरोध हो जाता हो, तो वहां पर लक्षणा की जाती है। तो लक्षणा वृत्ति के द्वारा जिस अर्थ का भान होता है उस अर्थ को कहते हैं लक्षार्थ। तो गंगा पद का लक्षार्थ क्या होगा, गंगा तीर, गंगा जी का किनारा होगा। इसलिए गंगा जी के किनारे में घोष घर झोपड़ी रह सकती है। ठीक इसी प्रकार यहां पर ले लो, महावाक्य के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान होना चाहिए अभी बताया, अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। अपरोक्ष ज्ञान से ही अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति होगी, परोक्ष भ्रम से परोक्ष ज्ञान से हो जाएगी। तो विचार करना है, तत्त्वमसि महावाक्य आया अथवा अहम ब्रह्मास्मि, भाई त्वम शब्द से किस अर्थ को लेते हैं आप। अहम ब्रह्मास्मि अहम शब्द आया कि अहम शब्द से किस अर्थ को आप लेते हैं। शब्द तो समझ में आ जाता है, अहम मतलब मैं, अत्वम मतलब तुम। इसलिए अहम शब्द से आप मन बुद्धि शरीर को लेते हो कि मन बुद्धि में विशिष्ट चेतन उसको लेते हो, तो इसके साथ एकत्व तो होगा नहीं। अंतकरण विशिष्ट जो चेतन है इसका अभेद शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म से नहीं हो सकता है। इसलिए फिर क्या करना चाहिए, तात्पर्य उपपत्ति नहीं हो पा रही है, महावाक्य प्रमाण है, दोनों का अभेद नहीं हो पा रहा है और ज्ञान से ही मुक्ति होती है, तरति शोकम आत्मविद। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, उस आचार्य ने कुछ अलग कहा, इस आचार्य ने कुछ अलग कहा, वो महापुरुष कुछ अलग बोलते हैं, हम किसकी बात को समझेंगे, किसकी बात को प्रमाण मानेंगे, ऐसा संशय हो जाता है साधक के चित्त में। और कहने वाले सब आप्त पुरुष है ना, रामानुज आचार्य ने कुछ अलग कहा भाई, निम्बार्क आचार्य ने कुछ अलग कह दिया, भगवान शंकराचार्य ने कुछ अलग बोल दिया, हम किसी बात को मानेंगे। तो यहां पर ध्यान देना चाहिए, जो आचार्य लोग जो अलग अलग बोलते हैं विरोध मालूम पड़ता है वाक्यों में, उसका कुछ तात्पर्य अलग है, क्यों ऐसा बोलते हैं। जैसा अधिकारी होता है, जो अधिकारी जिसका हो उसका उपदेश किया जाता है ना। मान लो किसी को खिचड़ी नहीं पच रही है, उसको मालपुआ खिलाओगे, देसी घी से बना हुआ पराठा खिलाओगे, तो पचेगा कैसे, नहीं पच सकता है। ठीक इसी प्रकार यहां पर जो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, है ना, तो उसके लिए ज्ञान का उपदेश करने पर भी क्या ज्ञान होगा, नहीं हो सकता है। ले पीछे ये बता दिया तृतीय प्रकरण में, बहु जन्म अभ्यासात है ना, देहादिशु आत्मधिक्षणात, पीछे बताया देखो, बार बार वेदांत सुनने पर भी अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि सुनने पर भी अहम बोलने से शरीर झट से आ जाता है, क्यों, बहु जन्म अभ्यासात, अनेक जन्म से शरीर में आम्बुत्यम करते आ रहे, उसका दृढ़ अभ्यास हो गया, संस्कार पड़ गया है ना। इसलिए तर्क से आपने सिद्ध भी कर दिया कि आत्मा अनात्मा से भिन्न है, चेतन जड़ से भिन्न है, ये हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। दृश्य से दृष्टा भिन्न है, जानते हैं। हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हैं, हम जानते हैं। यदि जानते हैं तो फिर जो है एक छोटी सी सुई है, कांटा है, उससे भी भय क्यों लगता है? इसका मतलब शरीर में अंबुद्धि अभी गई नहीं है, समझ में ना। जानते बहुत कुछ है लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते, इसका मतलब प्रतिबंधक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रतिबंधक निवृत्ति जिस साधन से हो सकती है, उस साधन का उपदेश करना चाहिए। और साधन भी प्रमाण होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। इसलिए उस महापुरुषों ने भी वेद को ही प्रमाण मान करके वेद का अर्थ अलग कर दिया। देखो, इसलिए तत्त्वमसी में वो लोग उपासना मानेंगे, रामानुजाचार्य आदि तत्त्वमसी में क्या करेंगे? उपासना मानेंगे, ज्ञान नहीं मानेंगे। इसलिए तत्त्वमसी पीछे गया ना, महावाक्य विवेक प्रकरण गया, कौन सा है? पंचम। पंचम प्रकरण का नाम क्या हुआ? महावाक्य विवेक प्रकरण। तो महावाक्य आ गया, देखो तत्त्वमसी, एक तत् हो गया, एक त्वम हो गया, दूसरा हो गया असि। असि दोनों के एकत्व का प्रतिपादन करने वाला है, असिपत हो, दोनों में सामानाधिकरण है, दोनों का अर्थ एक है, तत् और त्वम। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, आचार्य लोग, जिस साधक को उपासना में भक्ति में प्रवृत्त कराना है उसको भी तत्त्वमसी का उपदेश करेंगे, और जो ज्ञान में समर्थ है उसको भी भगवान शंकराचार्य तत्त्वमसी का उपदेश करेंगे। लेकिन जो उपासना में अधिकारी है, ज्ञान में अधिकारी नहीं है, तो उसी के लिए तत्त्वमसी का अलग अर्थ करेंगे। देखो, एक तत् हो गया, दूसरा तम हो गया। इसलिए त्वम पद में लक्षणा नहीं करेंगे, त्वम का तो तुम ही हो, बस विशिष्ट हूं मैं। इसलिए त्वम पद की लक्षणा नहीं करेंगे वो लोग, लक्षणा करेंगे तत्पद की, समझ में ना, तत्पद की। तो तत्पद की लक्षणा किस में करेंगे? तत्सहचरितः, तुम उसके साथ में हो, तुम जो जीव हो है ना, ईश्वर के साथ में हो। कहां पर? बुद्धि में है, बुद्धि में परमात्मा भी है, ईश्वर, और तुम भी हो। श्रुति क्या है? दासोपन्ना सविजा सकाया, समान वृक्षम परिसस् हो जाते, वो लोग प्रमाण देंगे इसी श्रुति को। तत् का अर्थ क्या हो गया? तत्सहचरितः, तुम उसके साथ में हो। अथवा तत्शब्द का अर्थ करेंगे तत्सदृशः, तुम उसके सदृश हो, क्योंकि वो भी चेतन है, तुम भी चेतन हो। और जीव ईश्वर का अधीन होता है, इसलिए तद अधीनः, तुम उसके अधीन हो, अर्थात तुम उसके आश्रित हो। तो ऐसा अर्थ क्यों करेंगे? ऐसा बोलने से उपासना करेगा, मैं ईश्वर के आश्रित हूं, मैं तो सेवक हूं, मैं तो भक्त हूं, इस भावना से उपासना करेगा वो, ध्यान में ना। लेकिन जो कृतो उपास्ती है, जो उपासना पहले कर चुका है पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में, उसी के लिए फिर उपासना का उपदेश नहीं किया जाएगा, वो तो कर चुका है अभी, उसका चित्त तो शुद्ध हो चुका है, उसी के लिए फिर ज्ञान का उपदेश करना है, ध्यान में ना। इसलिए वाक्य के तात्पर्य का निर्धारण पहले होता है कि महावाक्य का तात्पर्य क्या है, है ना। जैसे बोल दिया अभी गंगायाम घोष अथवा सैंधवम आनय, वक्ता का तात्पर्य किसमें है, पहले ये निर्धारण करना होता है, धर्म है ना। फिर विचार किया जाएगा भाई कि कौन सी लक्षणा करनी है, दो पद की लक्षणा करनी है कि एक पद की लक्षणा करनी है, है ना। तो लक्षणा का विचार बाद में होता है, ध्यान में रखिएगा, और तात्पर्य का निर्धारण पहले होता है। तो यहां पर उदाहरण जैसे बताया सैंधव माना या, तो तात्पर्य का निर्धारण कैसे होगा, प्रसंग क्या चल रहा है, समय परिस्थिति प्रसंग के अनुसार तात्पर्य का निर्धारण होता है। जैसे व्यवहार में, ठीक इसी प्रकार शास्त्र में भी होगा। तो तात्पर्य का निर्धारण कैसे होगा, उपक्रम उपसंहार आदि से, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, इसको तात्पर्य ग्राहक लिंग बोलते हैं। इसलिए जहां जहां पर महावाक्य आएगा वहां पर उपक्रम क्या है, उपसंहार क्या है, इसके द्वारा जब तात्पर्य का निर्धारण हो जाता है तब जाकर के जो है विचार किया जाएगा कि यहां पर कौन सी लक्षणा करनी है, और इसके साथ साथ एक पद की लक्षणा करनी है कि दो पद की लक्षणा करनी है। यहां तो ज्ञान का प्रकरण है, उपासना तो है ही नहीं, तो उपासना तो कर चुका है वो, है ना। इसलिए यहां पर दो पद की लक्षणा करनी है, एक पद की लक्षणा करेंगे उपासना तो हो जाएगी, तुम उसके सदृश हो, तत्पद की लक्षणा करने से हो जाएगा, तुम पद की करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर तात्पर्य अद्वैत ज्ञान में है, इसलिए यहां पर लिखते ना देखो ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञान, टीका में चल रहा है ना, जीव और ब्रह्म का एकत्व, ये हो गया महावाक्य का तात्पर्य। तो तात्पर्य का निर्धारण किससे हुआ, उपक्रम उपसंहार आदि से हुआ, है ना। इसलिए फिर दो पद की लक्षणा करनी होगी, तत्पद की भी लक्षणा करेंगे, तम पद की भी लक्षणा करेंगे, है ना। इसलिए वाचार्थ को छोड़ना होगा, फिर इसको कहते हैं शोधन, समझ में ना, ये शोधन बोलने देखो, त्वम पदार्थ शोधन पूर्वकत्वात्। शोधन का अर्थ होता है दोष निवारणम शोधनम, दोष निवारणम शोधन, दोष को हटाने का नाम होता है शोधन, अर्थवा निर्दोषकरणम, निर्दोषकरणम शोधनम, निर्दोष करना। किसको निर्दोष करना है, यहां पर आत्मा को निर्दोष करना है। त्वम पदार्थ, अहम पदार्थ, तत्त्वमसि में त्वम पदार्थ और अहम ब्रह्मास्मि में अहम पदार्थ। इसलिए आप मैं तो बोलते हो, लेकिन मैं से आप किसको समझते हो, इसका तुम पहले निर्धारण कर लो। इसलिए जो जो आत्मा नहीं है, है ना, उसको हटा सकते हो आप, है ना। तो विचार करना चाहिए भाई, जैसे घटपट आदि आत्मा नहीं है क्योंकि दृश्य हो गया वो, है ना। इसलिए सबसे पहले विवेक को बता दिया, इसलिए विवेक पंचक अब आ गया, पहला जो भाग का नाम क्या हो गया, विवेक। इसलिए विवेक पहले होना चाहिए। तो यहां पर विवेक किसका होना चाहिए, पहले त्वम पदार्थ का बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ा कठिन हो जाता है त्वम पदार्थ का निर्धारण करने में, तत्पदार्थ का तो हो जाता है ना, क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म निर्विशेष है, सुख दुख से रहित है, ये बात तो जल्दी समझ में आती है, लेकिन मैं निर्दोष हूं, सुख दुख से रहित हूं, ये बात समझ में जल्दी नहीं आती है। नन्मय न जैसे घटपटादि आत्मा नहीं है, ये बात भी समझ में आती है, घटपटादि दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, वो क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूं, ये तो समझ में आ गया जल्दी। लेकिन विचार करने पर जैसे घटपटादि दृश्यक रूप से भासता है, उसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रिया भी भासती है ना, लेकिन इसका निरूपण जल्दी नहीं हो पाता है ना। आत्मा घटपटादि दृश्य में विवेक तो जल्दी होता है, लेकिन मन बुद्धि इंद्रियां से भी मैं भिन्न हूं, इसका विवेक जल्दी नहीं होता है। इसलिए जो जो अनात्मा है ना, उसमें जब अनात्मा की बुद्धि कर देंगे तो हट गया है ना। जब अनात्मा की बुद्धि करेंगे तो बुद्धि का निश्चय किसके किससे होगा, अपने से होगा ना। हाँ, ये पुस्तक है, पुस्तक आत्मा नहीं है, तो पुस्तक आत्मा नहीं है हाँ ना, इसका निर्धारण किससे हुआ, अपने से हुआ ना, अपने से हुआ। साक्षी के बिना नहीं होता है, साक्षी के बिना बात का निश्चय नहीं होता है, हो गया। जैसे घटपटादि पुस्तक आत्मा नहीं है, विचार करने पर मन भी आत्मा नहीं है, तो नहीं है क्योंकि मन का बाद हो जाता है, मन की निवृत्ति हो जाती है सुषुप्ति में, जागृत का स्वप्न में हो जाता है, स्वप्न का जागृत में हो जाता है, जागृत स्वप्न का सुषुप्ति में हो जाता है, और उड़ने पर फिर सुषुप्ति का हो जाता है। ये सब आने वाले जाने वाले और दिखने वाले है, समझ में ना। ले जो जो दृश्य होगा वो अनात्मा होगा है ना। आज जो दृश्य नहीं है लेकिन भासे, उसका नाम क्या है, आत्मा। जो दृश्य नहीं लेकिन भासता हो, किसी से ना भासता हो लेकिन भासता हो, किसी से ना भासे लेकिन भासता हो, ऐसा कौन होगा, आत्मा ही होगा। ध्यान में ना, जो किसी से ना भासे लेकिन भासे है ना, वो आत्मा हो गए, उसको कहते हैं तम पदार्थ। यहां पर इसका नाम हो गया शोधन, ध्यान में रखना। जैसे तम पदार्थ का शोधन हो जाएगा तब तो फिर महावाक्य का विचार होगा, हुए कि नहीं। ये तम पदार्थ का, अहम पदार्थ का जब तक शोधन नहीं होगा तो महावाक्य का विचार आप नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर लिखते हैं, देखो तम पदार्थ शोधन पूर्वक, तो तम पदार्थ शोधन पूर्वक कौन हो गया, ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञान है ना। इसलिए तम पदार्थ का पहले शोधन कर लो। अच्छा, इसलिए इस कूटस्थ दीप प्रकरण का तात्पर्य ये होगा, आगे लिखते हैं। तम पदार्थ शोधन परम कूटस्थ दीपाख्यम, ये देखो कूटस्थ दीपाख्यम ग्रंथम, इसको बोल रहा है ये अष्टम प्रकरण को। ये अष्टम प्रकरण जो ग्रंथ है इसका नाम क्या हो गया, कूटस्थ दीप, कूटस्थ दीपम आख्यायस्य, आख्याला नाम, कूटस्थ दीप नामक ग्रंथ प्रकरण जिसका हुआ, ऐसा जो अष्टम प्रकरण ग्रंथ, उसका तात्पर्य क्या है, तम पदार्थ शोधन परम, समझ में ना, परम का अर्थ तात्पर्य, तम पदार्थ शोधन परम तात्पर्यम यस्य, ऐसा अर्थ है, तम पदार्थ को शोधन करने में जिसका तात्पर्य है, दूसरा कोई तात्पर्य यहां पर नहीं है, हो गया ना। इसलिए बोल दिया, देखो तम पदार्थ शोधन परम कूटस्थ दीपाख्यम ग्रंथम, ऐसा जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को आरंभ करते हुए आरभ माना आरंभ करते हुए कौन आरंभ करते हैं? आचार्य। कौन है यहाँ पर आचार्य जी? कौन है? हाँ, स्वामी भारती तीर्थ। स्वामी लगाना चाहिए है ना, स्वामी भारती तीर्थ तो आचार्य यहाँ पर। तो अस्य ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वेन तदीयर एव विषयताभिस्तद्वत्ता सिद्धिम अभिप्रेत्य। बोलते हैं देखो, ये जो ग्रंथ है ना, प्रकरण है, ये प्रकरण प्रकरण है। तो किसका प्रकरण है? वेदांत का प्रकरण। समझ में ना, वेदांत विस्तृत है। वेदांत कौन हो गया यहां पर? वेदांत कौन है? उपनिषद। हाँ, ये समझ लो। चलिए, वेदांत शब्द का मुख्यार्थ कौन होगा? उपनिषद। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, वो शास्त्र हो गया समझ लो। और शास्त्र का जो अनुबंध चतुष्टय होता है ना, अब प्रकरण का भी अनुबंध चतुष्टय वही होता है, दूसरा नहीं होता है। अनुबंध तो आप लोग समझते हैं, जिसको जानने पर ग्रंथ की प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं अनुबंध। अनु पश्चात, अनु मतलब पश्चात, स्व ज्ञान पश्चात है ना, ग्रंथे प्रवर्तयति बधनाति इति अनुबंध। तो इसका अधिकारी कौन है, विषय कौन है, प्रयोजन कौन है, संबंध क्या है, इसका जब नहीं जानेंगे तो ग्रंथ में प्रवृत्ति कैसे होगी? समझ में ना, ना अध्ययन में होगी, ना अध्यापन में होगी, ना स्वाध्याय में होगा, ना प्रवचन में होगा। अभी जो चल रहा है ना, ये स्वाध्याय की प्रवचन है। क्या चल रहा है? दोनों चल रहा है। हाँ, ध्यान में रखो, आप लोग क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ? प्रवचन कर रहा हूँ। हाँ, ये साध्य प्रवचनाभ्याम न प्रमदितभ्यम कहते कि नहीं, और प्रवचन शब्द का अर्थ क्या है? अध्यापन, दूसरे को समझाना। दूसरे को समझाने का नाम क्या है? प्रवचन। आजकल तो ये शब्द बदल गया, प्रवचन की परिभाषा ही बदल गई, लेकिन प्रवचन शब्द का मुख्य अर्थ क्या होता है? अध्यापन। ऐसा भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया है तैतरीय उपनिषद में, प्रवचन का अर्थ अध्यापन। और आप जो अभी जो कर रहे हैं, साध्य हो गया। अजी, अध्यापक मतलब पढ़ाने वाला, समझाने वाला अध्यापक हो गया, और उसका जो व्यापार हो रहा है, समझा रहा है, शब्द की प्रवृत्ति वो हो गया अध्यापन। और आप जो कर रहे अध्ययन, और किसका अध्ययन? स्व का अध्ययन। सही में ना, स्व मतलब आत्मा, स्व का अर्थ क्या है? आत्मा। आत्मा आत्मीय धन ख्याति स्व शब्द का अर्थ, इसलिए आप किसका अध्ययन कर रहे हैं? आत्मा का अध्ययन, आत्मा का स्वरूप क्या है। समझ में ना, स्वस्य अध्याय स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। चलो, इसलिए बोलते हैं शास्त्र का जो अनुबंध चतुष्टय होगा, प्रकरण का भी वही होगा, दूसरा होगा नहीं। जैसे कि देखो, जैसे वेद में दो भाग है ना, एक मंत्र भाग हो गया, दूसरा ब्राह्मण भाग हो गया। इसलिए मंत्र का जो विषय आदि होते हैं मंत्र के, है ना, ब्राह्मण के भी वही होते हैं, दूसरा नहीं होता है। और इतना है कि मंत्र में जो संक्षिप्त रूप से कहा गया उसका व्याख्यान विस्तृत रूप से ब्राह्मण भाग में होता है। जैसे ईसावासियों को ले लो, ईसावास्य हो गया, शुक्ल यजुर्वेदी, ये मंत्र भाग हो गया। तो उसमें जो जो कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद ब्राह्मण भाग में भी वही कहा गया, उसका विस्तार है। समझ में ना, उसका विस्तार हो गया। जैसे ईसावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है? ईश्वरीय है ना। इदम मतलब दृश्यमान जगत, और सर्वम कहने से मैं भी, जो भी दिखाई दे रहा है जगत दृश्य और मैं, इदम जगत अहम च सर्वम ईशावास्यम ईश्वरीय ब्रह्मय ध्यान में है ना। ये जो प्रथम हो गया ना ईशावास्यम, ध्यान में रखना, ये जो प्रथम वाक्य हो गया पूर्वार्ध है ना, इसी का ही सारा व्याख्यान सभी उपनिषद में, दूसरा कुछ नहीं होता है। कोई भी उपनिषद ले लो इसी का ही मिलेगा व्याख्यान, दूसरा कुछ मिलता नहीं है, पकड़ में है ना। तो इसी का व्याख्यान देखो वेदान्ना में हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, ईशावास्यम का व्याख्यान क्या है, अहम ब्रह्मास्मि नेह नानास्ति किंचन, ये वेदान्ना में हो गया, पकड़ में है ना। हाँ वो उपासना हो गई, वो उपासना है कुर्वन नैव्यः कर्माणि, उसी का व्याख्यान है आत्मा इत्येव उपासित। ठीक इसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, देखो उपनिषद का जो अधिकारी होगा सातन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी हो गया, और विषय क्या है ब्रह्मात्मा एकत्व, ये विषय हो गया, और प्रयोजन क्या है मोक्ष हो गया, और ग्रंथ हो गया प्रतिपादक, प्रतिपाद्य हो गया निर्विशेष ब्रह्म, ये संबंध हो गया। तो उपनिषद जो शास्त्र है उसका जो अनुबंध चतुष्टय होगा, इस प्रकरण ग्रंथ का भी वेदांत, ये जो है पंचदशी का भी वही होगा, दूसरा कोई होगा नहीं। इसलिए बोलते हैं देखो वेदांत प्रकरणत्वेन, मतलब वेदांत का प्रकरण ग्रंथ होने के कारण तदीय रेव विषयाधिवी, तदीय मतलब उसमें रहने वाले, तदीय शब्द का अर्थ उसमें रहने वाले, किसमें उपनिषद में जो रहने वाले अधिकारी आदि अनुबंध चतुष्टय, असल लिख दिया आगे विषय आदि, तदवत्ता सिद्धि, तदवत्ता मतलब अनुबंध वाला, ये पंचदशी भी हो गया, दूसरा कुछ हुआ नहीं है ना। अभिप्रत्य ऐसा मानते हुए, अभिप्राय रखते हुए, इसलिए सबसे पहले त्वं पद लक्ष्यवाच्यौ कुटस्थ जीवौ स दृष्टान्तं भेदेन निर्दिशति। त्वं पद का लक्ष्य क्या है और वाच्य क्या है, बोलिए समझ लेना चाहिए है ना। कभी कभी वाच्यार्थ से भी वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, और कभी लक्ष्यार्थ से भी होता है, ध्यान में ना। तो जहां पर वाच्यार्थ से बोध नहीं हो पा रहा है वहां पर क्या करेंगे, लक्ष्यार्थ लेंगे भाई, सही में ना। ये बता दिया कि गंगायाम जलम, यहां पर लक्षण करने की क्या जरूरत है, जल तो रह सकता है गंगा जी में, गंगायाम घोषा कहेंगे तो नहीं होगा, वाच्यार्थ नहीं हो सकता है, वहां पर लक्ष्यार्थ लेंगे, ध्यान में ना। ठीक इसी प्रकार यहां पर बोल, जहां पर उपासना हो, उपासक यदि हो तो हमारा वाच्यार्थ कैसे हो जाएगा, तुम ईश्वर के साथ हो, तम पद की लक्षण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो उपासना कर चुका है, ज्ञान का अधिकारी है, साधन चतुर्थ संपन्न है, वहां पर ज्ञान का उपदेश करेंगे आप, उपासना नहीं कर सकते, ध्यान में ना। इसलिए तम पद का लक्षार्थ को लेना होगा, लेकिन वाच्यार्थ का स्वरूप क्या है, लेकिन लक्षार्थ का स्वरूप क्या है, ये भी तो जानना चाहिए, इसलिए बोल रहे त्वं पद लक्ष्य और त्वं पद वाच्य। तो कौन है जिसको कहने वाले हैं, पहले ऐसा होता है ना भाई, इसमें क्या निरूपण किया है पता नहीं क्या होगा इसका विषय, इसलिए पहले से महापुरुष लोग बोल देते हैं कि कूटस्थ हो गया लक्ष्यार्थ त्वं पद का, और त्वं पद का वाच्यार्थ हो गया जीव चिदाभास, इसको दृष्टांत देना पड़ता है ना, इसलिए स दृष्टांतम, दृष्टांतेन सह इति स दृष्टांतम भेदेन निर्देशति, दोनों में भेद है, दोनों में अभेद नहीं हो सकता है, कुटस्थ और जीव में भेद होगा कि अभेद होगा, भेद भेद होगा, सही में ना, लेकिन दोनों का स्वरूप में अभेद होगा है ना, इसलिए बोल रहे हैं। भेदना निर्देशते, निर्देश निरूपयति, इसका निरूपण कर रहे हैं। तो कैसे निरूपण है इसका विचार कल से प्रारंभ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।